हरे कृष्ण श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 11वां अध्याय श्लोक संख्या 4, 5 एंड 6। इस आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वंशी विभूषितकरा नवनीरधाभा पीताम्भरधरुणबिम्बफलधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्व अहं न जाने। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति ये वेदे साङ्गतक्रमोपनिषदि गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तत् कथेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विधो सुरासुरगणा देवाय तस्मे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायामुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिकी। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारभक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभुनित्यनन्दा श्री अद्वैत गदाधारा श्रीवासदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथ श्रीमद्भागवतम महापुराण की जय हो। प्रथम स्कंद 11वां अध्याय जिसका शीर्षक है भगवान श्री कृष्ण का द्वारिका में प्रवेश। तो हमने देखा भगवान श्री कृष्ण का अपनी नगरी द्वारिका में प्रवेश हो गया है। वो उच्च स्वर में शंखनाद कर रहे हैं ताकि समस्त प्रेमियों को, जो कि कितने समय से भगवान की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उन तक ये सूचना पहुंच जाए कि उनका प्रीतम आ गया है। और जैसे ही उन्होंने शंखनाद सुना तो सब प्रेमी भगवान के, जो कितने समय से प्रतीक्षा कर रहे थे इस क्षण की, वो सब अपने अपने घरों से निकले और भगवान की ओर दौड़े आ रहे हैं, भागे आ रहे हैं कि प्रथम दर्शन मुझे करना है। और वो खाली हाथ नहीं आ रहे। यहाँ पर सूत गोस्वामी अत्यंत सुंदर दृष्टांत दे रहे हैं कि जब भगवान के पास जाते हैं तो अवश्य कुछ भेंट लेके जाना चाहिए। इसे सूत गोस्वामी कहते हैं श्लोक नंबर 5 में, तत्रोपनीत बलयो रवेदीपम् इवादृता आत्मा रामं पुण्यकामं निजलाभेन नित्यदा प्रीत्युत्फुल्लमुखा प्रोचुर हर्ष गद्गदया गिरा पितरं सर्वसुहृदम् अवितारम् इवार्भकाम् तत्रोपनीत बलयो रवेदीपम् इवादृता आत्मा रामं पुण्यकामं निजलाभेन नित्यदा प्रीत्युत्फुल्लमुखा प्रोचुर हर्ष गद्गदया गिरा पितरं सर्वसुहृदम् अवितारम् इवार्भका तत्रोपनीत बलयो रवेदीपम् इवादृता आत्मा रामं पुण्यकामं निजलाभेन नित्यदा प्रीत्युत्फुल्लमुखा प्रोचुर हर्ष गद्गदया गिरा पितरं सर्वसुहृदम् अवितारम् इवार्भका तत्रोपनीत बलयो। तत्रोप मतलब तत्पश्चात, वो सब जब आए भगवान के लिए, उपनीत अर्पित किया भगवान को, क्या बलयो, बहुत सारे भगवान के लिए भेंटे लेकर आ रहे थे, बहुत सारे उपहार लेकर आ रहे थे, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि अब हम कृष्ण से मिलने जा रहे हैं तो कुछ तो लेके जाएं। वास्तव में ये प्रेम है जो वास्तव में लुटाना जानता है। वो ये नहीं सोच रहे कि ये तो भगवान है, अभी हस्तिनापुर से आए हैं तो जाहिर सी बात है हस्तिनापुर से आए तो भगवान को इतनी सारी भेंटे तो दी होंगी रजिस्टर महाराज ने, और वैसे भी द्वारिका के तो द्वारिका देश है, इनको बोला हमारी छोटी छोटी वस्तुओं की कोई आवश्यकता नहीं है, इनको क्या जरूरत है, कोई कपड़े लेकर आ रहा है भगवान के लिए, कोई गहने लेकर आ रहा है, कोई सोने की मुद्राएं लेकर आ रहा है, कोई फल फ्रूट्स लेकर आ रहा है, कोई क्या लेकर आ रहा है, सब भर भर के, मतलब उनको ऐसा लग रहा है कि हम कैसे भगवान के लिए कुछ करें, भगवान को कुछ दें, हम कैसे भगवान की सेवा में कुछ समर्पित कर सकें। हालांकि भक्तों, जो कुछ भी है वो भगवान का है, हमारे पास जो कुछ भी दिया हुआ है वो सब कृष्ण का दिया हुआ है, लेकिन ये भक्त के अंदर एक हमेशा इच्छा होती है कि मैं कुछ कृष्ण को समर्पित करूं, मैं कुछ भगवान के लिए बनाऊं, मैं कुछ भगवान को खिलाऊं। कुछ लोग बहुत है ना इस बात से कहते, अभी भगवान को क्या जरूरत है, आप लोग भगवान को बना बना के खिलाते हो भोजन, भगवान क्या भूखे हैं भोजन के, भगवान को क्या, त्रिलोकी के नाथ हैं, उनको क्या जरूरत है ये सब वस्तुओं की। लेकिन वास्तव में भगवान प्रसन्न होते हैं। यहाँ दृष्टांत देते हैं रवेर दीपम विवादृता, यानी यहाँ बता रहे हैं कि इस संसार में भी देखो सारे संसार को रोशनी कौन देता है, रवि। रवि का क्या मतलब है, सूर्यदेव। अब सूर्य जो है वो सारे संसार को रोशनी देता है, परंतु शास्त्र कहता है सूर्य को भी दीपक दिखाया जाता है ना, सूर्य की पूजा जब की जाती है तो उनको भी दीपक। हालांकि सूर्य का उपासक ये नहीं सोचता कि ये सूरज को क्या जरूरत है कि ना उसको दीपक दिखाया जाता है, वो तो सबको सबको रोशनी देता है, उसको तो दीपक की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जैसे कोई सूर्य को दीपक दिखाता है तो ये नहीं सोचता कि ये इसके काम आएगा, बेचारा दीपक अंधेरे में, सूर्य अंधेरे में ये दीपक उसके उजाला करेगा, ऐसा नहीं सोचता। बस वो अपनी श्रद्धा से उसके लिए देता है, वो जानता है कि सूर्य को आवश्यकता नहीं है परंतु हमें आवश्यकता है, वास्तव में हमें आवश्यकता है भगवान को अगर हम खिलाते हैं। भगवान बताते हैं श्रीमद् भगवद गीता 9.26 में, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छते तदहम भक्त प्रहतम अश्नामि प्रयतात्मना। जो प्रेम से मुझे पत्ता फल फूल या पानी अर्पण करता है मैं उसे स्वीकार करता हूँ। तो यहाँ पर भगवान ने खत्म नहीं किया, ये नहीं सोचना चाहिए कि भगवान को आवश्यकता है। भगवान आगे कहते हैं 27 में, शुभा शुभ फलैरेवम मोक्ष से कर्म बंधन है। अगर ऐसा करोगे, अगर तुम मुझे समर्पित करोगे, मुझे खिला के खाओगे, तो फिर तुम शुभ और अशुभ समस्त कर्मों के बंधन से छूट जाओगे, मतलब लाभ तुम्हारा है। भगवान बता रहे हैं कि खिलाओ मुझे, लेकिन इससे लाभ तुम्हारा होगा। अगर नहीं खिलाओगे तो भुंजते ते त्वम पापा ये पचन्ति आत्मकारणा, तो फिर तुम बड़े बड़े अपराधी हो जाओगे और बहुत बहुत अपराध का दंड तुम्हें भोगना पड़ेगा। तो कोई लोग यहाँ पर ऐसे प्रश्न करते हैं कि चलो उस समय तो भगवान सामने थे, भगवान को है ना सब लोग भेंट देते थे, खिलाते थे, मगर अब तो वास्तव में भगवान और भगवान के विग्रह में कोई अंतर नहीं है। भगवान ने विग्रह रूप में आकर हमारी सेवा स्वीकार करना कबूल किया है। भगवान हमारी सेवा को एक्सेप्ट करते हैं विग्रह के माध्यम से। भगवान प्रसन्न होते हैं जब कोई भक्त उन्हें खिलाता है, उन्हें वस्त्र आभूषण देता है, उनका श्रृंगार करता है, उनकी सेवा करता है, उनको झूले में झुलाता है, उनको उनकी कोई भी सेवा जब विग्रह रूप में की जाती है तो भगवान उसे स्वीकार करते हैं। कोई ऐसे राधा गोविंद महाराज बता रहे थे कि जब मैंने इस श्लोक के ऊपर 9.26 और 27 के ऊपर मैं चर्चा कर रहा था तो कोई खड़ा हो गया और कहने लगा कि भगवान को क्या आवश्यकता है, मतलब भगवान को चढ़ाकर क्या फायदा। अब भगवान स्वयं ही अन्न है, स्वयं ही भगवान फूल है, स्वयं ही भगवान जल है, तो गजब ऐसे बता रहे थे कि वो एक ना सॉन्ग गा के बता रहे थे, गजब हैरान हूँ भगवान तुम्हें कैसे रिझाओ मैं, ना कोई वस्तु है ऐसी जिसे सेवा में लाऊं मैं। ऐसी तो कोई वस्तु संसार में है नहीं जो तुम्हारी सेवा में उपयोगी हो, क्योंकि फूल भी तुम हो और कृष्ण भी तुम हो, तो भला भगवान पे भगवान को कैसे चढ़ाऊं मैं। तो फिर इसी तरह से हर एक वस्तु के लिए कह रहे थे कि ये भी कृष्ण है, ये भी कृष्ण है, तो कृष्ण पे कृष्ण को क्या चढ़ाऊं मैं, और कोई वस्तु तो कृष्ण के अतिरिक्त संसार में कुछ है ही नहीं, तो फिर मैं कैसे कृष्ण की सेवा करूं। तो राधा गोविंद महाराज बता रहे थे कि ये केवल बहानाबाजी है, हर एक वस्तु में कृष्ण दिख रहा है, तो क्या तुम्हें खुद में कृष्ण नहीं दिख रहा, तुम स्वयं भी कृष्ण हो, है ना, तो तुम्हारे अंदर भी कृष्ण है, तो तुम स्वयं भी कृष्ण हो, फिर जो खाना तुम खाते हो वो भी कृष्ण है, खुद को खाते हुए अपने अंदर ढूंढते हुए ये नहीं सोचते कि कृष्ण के अंदर कृष्ण कैसे डालूं। ये सिर्फ भगवान की सेवा के समय याद आता तुम्हें कि हर एक वस्तु में कृष्ण है। तो वास्तव में हमें भगवान की सेवा हृदय से, प्रेम जहां होता है ना वहां पर स्वतः सेवा होती है, इच्छा होती है हृदय से कि कैसे सेवा करें हम, भगवान को कैसे प्रसन्न करें। तो ऐसे बोला कि आप लोग अगर है ना भगवान को खिलाते हो तो इसलिए खिलाते हो क्योंकि भगवान खाते नहीं है ना, रखा होता अगर भगवान खाते थे तो फिर आप लोग नहीं खिलाते थे। तो महाराज बोल रहे थे कि देखो घर में सब लोग खाते हैं, हम घर में बनाते ना, एक माता जी प्रसाद बनाती है, उनका पति खाता है, उनके बच्चे खाते हैं, रोज रोज खाते हैं, तो ये क्या कभी सोचती है कि मेरा पति भी खा जाता है, बच्चे भी खा जाते हैं, अब से मैं नहीं बनाऊंगी? और भी है ना, पता होता है कि अभी वो उनको भूख लगी होगी, स्कूल से आते बच्चे उससे पहले ही बना के रखती है, मेरे बच्चे खाते हैं ना, उनको भूख लगी होगी उनके लिए। तो जो प्यार करते हैं वो तो अभी अब भगवान है ना, भले ही स्पष्ट रूप से खाते नहीं है तो भी समय पे खिलाते, लेकिन सोच कर देखिए कि अगर भगवान स्पष्ट रूप से खिलाते होते फिर तो और भी आनंद के साथ खिलाते थे भक्त, है ना, क्योंकि भक्त प्रेम करते भगवान के साथ, और जो प्रेम नहीं करते वो तो तब भी नहीं खिलाते जब भगवान खाते ही नहीं, तो तब क्या खिलाएंगे जब वो पूरा खा लेंगे। लेकिन ये सब बहाने बाजियां हैं जो कि द्वारिकावासी नहीं कर रहे हैं। द्वारिकावासी भगवान के पास आ रहे हैं और बहुत बहुत भेंटें लेकर भगवान के सामने आ रहे हैं, हालांकि वो भगवान जो सारे संसार के प्रभु हैं, जो प्रभु सारे संसार के सभी जीवों को उनकी अवस्था की, उनकी आवश्यकता की हर एक वस्तु प्रदान करते हैं, उनके लिए वो उपहार ले लेके आते हैं। जैसे हम कभी गंगा में जाते हैं तो गंगा के पूजन के लिए जल की आवश्यकता होती है। कभी हमने याद किया है, याद करें, कभी कोई व्यक्ति ऐसा है जो घर से जल भर के आया हो गंगा में डालने के लिए? कभी भी नहीं ऐसा होता, और ना ही कभी ये सोचता है कि गंगा के अंदर तो जल ही जल है, उसे बना जल की क्या आवश्यकता है। गंगा की पूजा होती है जल से, वो खाली लोटा लेकर आते हैं और फिर वहीं से गंगा जल भर के गंगा की पूजा की जाती है। इसी तरह से भक्तों, जो कुछ भगवान ने दिया है उसी को भगवान को समर्पित कर दिया जाए, यही भक्ति है। तो यहाँ पर कह रहे हैं तत्रोपनीत बलयो रवेर दीपम इवाद्रता, जिस प्रकार से सूर्य को दीपक दिखाकर उनकी पूजा की जाती है, उसी प्रकार से भगवान की दी हुई वस्तुओं को ही भगवान को उपहार में देकर द्वारिका वासी अपने को धन्य मानते हैं। आगे कहते हैं आत्मा रामम पूर्ण कामम निजलाभेन नित्यदा। आत्मा रामम, कौन से प्रभु को ये सब उपहार दे रहे हैं? वो भगवान जो आत्मा राम है। आत्मा राम अर्थात अपने स्वरूप के आनंद में ही रमण करते हैं, आत्मा में जो रमण करते हैं, जो किसी वस्तु की उपेक्षा नहीं करते, जिन्हें ना ही किसी वस्तु की आवश्यकता है और ना ही इच्छा है, वो है ना, उस आत्माराम भगवान के लिए गिफ्ट्स लेकर आ रहे हैं। आत्मा रामम पूर्ण कामम, पूर्ण कामम मतलब भगवान की कोई ऐसी इच्छा नहीं है जो संतुष्ट ना हो। भगवान की सारी, भगवान नित्य संतुष्ट हैं, भगवान को किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, वो आत्मनिर्भर हैं, वो पूर्ण तरह से संतुष्ट हैं, बल्कि निजलाभेन नित्यदा, बल्कि अपनी शक्ति से समस्त जीवों की समस्त आवश्यकताओं को भी पूरा करते हैं, फिर भी ऐसे भगवान के लिए वो उपहार लेकर आ रहे हैं। और साथ में क्या हो रहा है, भगवान उन उपहारों को स्वीकार कर रहे हैं। प्रीत्युत्फुल्ल मुखा प्रोचुर हर्ष गदगदया गिरा। भगवान उनकी भेंटों को लेते हैं और लेकर अपने साथ रथ में रख रहे हैं। ये नहीं बोलते कि अभी मुझे इन सब वस्तुओं की थोड़ी आवश्यकता है, आप क्या लेकर आ रहे हो, क्यों, मुझे इन कोई जरूरत नहीं है। भगवान ले रहे हैं, और जब भगवान स्वीकार कर रहे हैं, प्रीत्युत्फुल्ल मुखा प्रोचुर, ये बहुत ही सुंदर, वो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं क्योंकि भगवान ने लिया है, भगवान उनकी वस्तु को स्वीकार कर रहे हैं, तो बहुत खुश होते हैं। वैसे ही भगवान आए हैं, अभी देखो मुख एक ही होता है, है ना, मुख कभी भी चेंज नहीं होता, लेकिन उस मुख का जो है ना भाव हमेशा चेंज हो जाता है। कभी हमारे प्रसन्नता की कोई बात होती है तो हम है ना खुश हो जाते हैं, और अगर कोई दुख की बात होती तो हमारा मुंह भी बोलते है कि ऐसा फेस कितना छोटा हो गया, कुमला गया है। तो उसी तरह से इनका मुख प्रीत्युत्फुल्ल मुखा, यानी प्रसन्नता से बहुत ही उनके फेस ऐसे लग रहे थे, हंस रहे थे सब, बहुत प्रसन्न हो रहे थे। और प्रोचुर हर्ष गदगदया गिरा, गदगदया गिरा मतलब उन्होंने कहा, किस तरह से कहा, बहुत हर्ष मतलब बहुत ज्यादा प्रसन्न होकर आह्लाद युक्त वाणी के साथ ऐसे बोल रहे थे, गदगद हो रहा था उनका कंठ, भगवान का सानिध्य प्राप्त हुआ, भगवान का प्रेम प्राप्त हुआ, भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ। तो उनकी वाणी, वो बोल रहे थे परंतु उनकी वाणी गदगद हो रही थी। वास्तव भक्तों, वाणी दो तरह से गदगद होती है। जिस प्रकार आंसू दो प्रकार से आते हैं, जब आंसू आते हैं एक तो बहुत ज्यादा दुख मिलता है तब, और दूसरा जब हम बहुत ज्यादा खुश होते हैं तब। उसी प्रकार से जब हम बहुत ज्यादा दुखी होते हैं तब हमारी वाणी गदगद हो जाती है, क्योंकि आंसू जो है कुछ तो बाहर निकलते हैं और कुछ हमारे कंठ में ही रुक जाते हैं, तो रुद्ध जाता है गला। और जब हम बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं तब भी हमारी वाणी रुद्ध हो जाती है और हम नेत्रों से अश्रु निकलने लगते हैं। तो आज क्योंकि सारे हस्तिनावासी बहुत प्रसन्न थे, तो वो गदगद वाणी से भगवान को कह रहे थे, किसको कहने लगे, पितरम सर्व हृदय सर्व सुहृदम, ऐसे भगवान जो कि सबके हितेशी हैं, मतलब अपने भगवान जो कि सर्व हितेशी हैं, सुहृदम हैं, जो सबके मित्र हैं, जो हमारे रक्षक हैं, जो हमारी संरक्षक हैं, ऐसे भगवान को वो नगरवासी कहने लगे, किस तरह, इवर्भका, इवा मतलब की तरह, अर्भका मतलब बालक, जैसे छोटा बालक अपने पिता के साथ पिता के स्नेह को प्राप्त करके कैसे उनसे बात करता है, इसी तरह वो भी गदगद वाणी से भगवान श्री कृष्ण जो कि संपूर्ण जीवों के सुहृद हैं, जो संपूर्ण की सुरक्षा प्रदान करने वाले हैं, उनको कहने लगे। अनुवाद, सारे नागरिक अपनी अपनी भेंट लिए भगवान के सन्मुख आए और उन परम संतुष्ट तथा आत्मनिर्भर भगवान को अर्पित किए, जो अपनी शक्ति से अन्यों को निरंतर देते रहते हैं। ये भेंट सूर्य को दिए गए दीप दान जैसी थी, फिर भी सारे नागरिक भगवान के स्वागत में ऐसी आह्लादमयी भाषा में बोलने लगे, मानो बच्चे अपने अभिभावक तथा पिता का स्वागत कर रहे हों। तात्पर्य, श्रीला प्रभुपाद द्वारा श्रीला प्रभुपाद की जय हो। श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं, भगवान को यहाँ पर आत्मा राम कहा गया है। वे आत्मनिर्भर हैं और उन्हें अन्यत्र सुख की खोज करने की आवश्यकता नहीं है। वे आत्मनिर्भर हैं क्योंकि उनका दिव्य अस्तित्व पूर्ण आनंदमय है। भगवान को किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, उनका स्वरूप दिव्य है और वो आनंदमय है, सच्चित आनंद है, तो उन्हें आत्मा राम कहा गया है। वे शाश्वत विद्यमान हैं, वे सर्वज्ञ हैं और सर्व आनंदमय हैं, अतएव उन्हें किसी भेंट की, चाहे वह कितनी भी मूल्यवान क्यों न हो, आवश्यकता नहीं है। फिर भी चूंकि वे सब शुभ चिंतक हैं, अतः यदि शुद्ध भक्ति में कोई उन्हें कुछ अर्पित करता है तो वे उसे स्वीकार कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि उन्हें ऐसी वस्तुओं की आवश्यकता है, क्योंकि वस्तुएं स्वयं उनकी शक्ति द्वारा ही उत्पन्न की जाती हैं। यहाँ पर उपमा दी गई है कि भगवान को भेंट की जाने वाली वस्तुएं सूर्य देव की पूजा हेतु दीपदान जैसी हैं। जो भी वस्तु ज्वलित एवं प्रकाशमय होती है वह सूर्य की शक्ति का उद्भवन है, तो भी सूर्य देव की पूजा करने के लिए दीपदान आवश्यक है। सूर्य की पूजा करते समय पूजा करने वाला उनसे कुछ न कुछ मांग करता है, लेकिन भगवान की शक्ति, भगवान की भक्ति करने पर दोनों ओर से कोई मांग किए जाने का प्रश्न ही नहीं उठता। यह तो भगवान और भक्त के बीच शुद्ध प्यार तथा स्नेह का प्रतीक है। यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी अत्यंत सुंदर बात बता रहे हैं कि सूर्य को दीप दिखाकर हम ان سے کچھ نہ کچھ مانگتے ہیں, لیکن بھگوان کی وستویں بھگوان کو ارپت کرنے کا ادیشیہ ابھیپرائے یہ نہیں ہے کہ اس کی بدلی میں دوارکا واسی بھگوان سے کچھ چاہ رہے ہیں. بھگوان کے شدھ بھکت بھگوان کو کچھ بھی دیتے ہیں, اس کی بدلی میں وہ بھگوان سے کیول اتنا ہی چاہتے ہیں کہ بس آپ سویکار کرو, کرشنا آپ کو پرسن کرنا میرا ادیشیہ ہے, مجھے آپ بس خالی میری سیوا کو سویکار کرو, مجھے اس کی بدلی میں کچھ نہیں چاہیے. تو یہاں شری پروبھا جی کہتے ہیں کہ یہ تو بھگوان اور بھکت کے بیچ شدھ پیار تتھا سنیہ کا پرتیک ہے. بھگوان سبھی جیووں کے پرم پتا ہیں, اتیو جو لوگ بھگوان کے ساتھ اس جیونت سمبندھ سے اوگت ہیں وے پتا سے پتر کی طرح مانگ کر سکتے ہیں, اور پتا بھی اپنے آگیاکاری پتر کی مانگ پوری کرتے ہوئے بنا کسی سودے بازی کے پرسنتا کا انوبھو کرتا ہے. بھگوان کلپ پورکش کے تلیہ ہیں, اور ان سے کوئی بھی ویکتی ان کی اہیتک کرپا سے کچھ بھی پراپت کر سکتا ہے, کنتو پرم پتا ہونے کے کارن بھگوان اپنے شدھ بھکتوں کو کوئی ایسی وستو نہیں دیتے جو بھکتی کے مارگ میں بادھک ہو. جو لوگ بھگوت بھکتی میں لگے ہیں وے ان کے دیویہ آکرشن دوارا انانیہ بھکتی کا پد پراپت کر سکتے ہیں. شیلا پربھوپاد کی جے ہو. شیلا پربھوپاد جی اتیانت ہی سندر بات یہاں پر بتا رہے ہیں کہ جب ہمارا سمبندھ بھگوان کے ساتھ ہو جاتا ہے تو ہمارا ادھیکار ہے, اگر ہم بھگوان کو پتا کے روپ میں پریم کرتے ہیں تو ہمارا ادھیکار ہے کہ ہم بھگوان سے مانگیں. پرنتو واستو میں بچے کے لیے کیا اچھا ہے اور کیا خراب ہے وہ اس کا پتا زیادہ اچھے طریقے سے جانتا ہے, اور ہمارے پتا جو کہ بھگوان شری کرشن ہے وہ کیول اس جنم کا نہیں بھوت بھوشیہ ورتمان سب کچھ جانتے ہیں. تو ہمارے لیے کیا بہتر ہے کیا نہیں بہتر ہے وہ ہمیں بھگوان کے اوپر چھوڑ دینا چاہیے. تو بھگوان کو یہ انسٹرکشنز دینے کی آوشیکتا نہیں ہے کہ آپ مجھے یہ دو. جیسے ایک آگیاکاری پتر ہوتا ہے وہ اس سے اگر اس کا پتا پوچھتا بھی ہے کیا چاہیے تمہیں تو اس کو یہی کہنا چاہیے پتا جی آپ کو جو میرے لیے اچھا لگتا ہے آپ مجھے وہ بتائیے وہ ہی میرے لیے کیجیے. تو اسی طرح سے ہمیں بھی بھگوان کو ایسا بولنا چاہیے کہ کیوں کہ آپ جانتے ہو کہ میرے لیے کیا بہتر ہے, آپ کی یوجنا ہے آپ کے پلانس میرے لیے زیادہ بہتر ہیں, کیونکہ میرے اندر تو بدھی ہی نہیں ہے, میں تو غلط مانگ بھی کر سکتا ہوں لیکن آپ غلط وستو نہیں دے سکتے, اس لیے آپ جیسا میرے لیے بہتر سمجھتے ہو ویسا کیجیے. اور اس لیے شلا پربھوپاد جی نے بتایا کیونکہ پرم پتا ہونے کے کارن بھگوان اپنے بھکتوں کو کوئی ایسی وستو نہیں دیتے جو بھکتی مارگ میں بادھک ہے. کوئی بھی ایسی وستو جو آپ کے جیون کے لیے ہتکر نہیں ہے وہ بھگوان آپ کو نہیں دیتے ہیں. جو لوگ بھگوت بھکتی میں لگے ہیں وے ان کے دیوی آکرشن دوارا پرم گتی کو انانیہ بھکتی کے پد کو پراپت کرتے ہیں. واستو میں بھگوان اگر کسی پر بہت زیادہ پرسن ہو جاتے ہیں تو انہیں انانیہ بھکتی پردان کرتے ہیں جس کے دوارا وہ اس جنم مرتیو کے چکر سے چھوٹ کر بھگوت دھام کو پراپت کر سکتے ہیں. تو واستو میں ہمارا لکشیہ بھگوت کرپا پراپت کرنا ہے, تو ہمیں ہمیشہ بھگوان سے یہی پرارتھنا کرنی چاہیے کہ کرشنا ہمیں کیول آپ کی اہیتکی بھکتی پردان کیجیے, انانیہ بھکتی کا پد جس کے دوارا میں آپ کو پراپت کر سکوں. تو کیا کہہ رہے ہیں وہ دوارکا واسی بھگوان کو, شلوک نمبر 6 میں سوت گوسوامی بتا رہے ہیں, نتا سمتی ناتھ پدانگری پنکجم ویرنچ ویرنچ سوریندر وندتم پرائنم کھیمم ہیچھتام پرم نایتر کالہ پربھویت پرہ پربو نتاسمتی ناتھ سدانگری پنکجم ویرنچی ویرنچ سوریندری وندتم پرائنم کھیمم इहेच्छतां परम् नायत्र कालः प्रभवेत् परः प्रभु नतः स्मतेनाथ सदाङ्घ्रिपङ्कजम् वीरिञ्च वैरिञ्च सुरेन्द्रवन्दितम् परायणं क्षेममिहेच्छतां परम् नायत्र कालः प्रभवेत् परः प्रभु नतः स्मतेनाथ सदाङ्घ्रिपङ्कजम् वीरिञ्च वैरिञ्च सुरेन्द्रवन्दितम् परायणं क्षेममिहेच्छतां परम् नायत्र कालः प्रभवेत् परः प्रभु नता स्मते नाथ। नाथ भगवान को कह रहे हैं कि क्योंकि हे भगवान आप हमारे नाथ हैं, हमारे रक्षक हैं, हमारे पालक हैं। नतास्म हम सब नतमस्तक हुए हैं, मतलब सब भगवान के चरण कमलों में। नतास्म ते नाथ सदांग्रि पंकज, सदांग्रि मतलब सदैव, अंग्रि कहते हैं पांव को, पंकज कहते हैं कमल को। तो भगवान के चरण कमल के चरण कमल में नतमस्तक है, आप हमारे रक्षक हो, आप हमारे स्वामी हो और हम सदैव के लिए आपके चरण कमलों में नतमस्तक हैं, आपके चरण कमलों में की वंदना कर रहे हैं। कैसे चरण कमल हैं आपके? विरिंच्य, विरिंच्य कहते हैं ब्रह्मा जी को, वैरिंच्य कहते हैं ब्रह्मा के पुत्र, यथा सनक तथा सनक सनातन सनंदन संत कुमार जो ब्रह्मा के प्रथम चार कुमार पुत्र हैं, उनको बोलते हैं वैरिंच्य, विरिंच्य, वैरिंच्य। सुरेंद्र, सुरेंद्र कहते हैं स्वर्ग के राजा इंद्र को। वंदितम अर्थात भगवान को बता रहे हैं कि हम तो आपको अपना नाथ मानकर, अपना पालक मानकर, अपना रक्षक मानकर आपके चरण कमलों में सदैव नतमस्तक रहते हैं, परंतु आपके चरण कमल कोई साधारण नहीं है। आपके चरण कमल की वंदना तो संसार के जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, विरिंच्य ब्रह्मा जी, वैरिंच्य संत कुमार और नारद आसित देवर और सुरेंद्र अर्थात इंद्र, देवराज इंद्र, सब आपकी वंदना करते हैं, आपके चरण कमलों में सदैव झुके रहते हैं। संसार में जितने भी महान पुरुष हैं वो सब आपके भक्त हैं। वास्तव में भक्तों, ये द्वारिकावासी ऐसे ही अपने अंदाजे से नहीं बोल रहे हैं या अपने ऐसे मनोकल्पना से नहीं बोलते हैं, ये सब द्वारिकावासी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इंद्र हो चाहे सुरेंद्र हो चाहे बड़े बड़े देवी देवता, ये सब मिलने आते थे द्वारिका में, भगवान से मिलने के लिए आया करते थे। जैसे मैंने आपको बताया एक बार इंद्र आए थे उनसे मिलने के लिए, भगवान से द्वारिका में आए और कहा बाहर जो वो खड़े हुए थे वॉचमैन है ना, दरबान जो खड़े थे, उनको बोला जाओ द्वारिकाधीश को कहो कि इंद्र ब्रह्मा आया है मिलने के लिए। तो अंदर गए, बोला ब्रह्मा जी मिलने आए हैं, द्वारिकाधीश को बोला। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कौन से ब्रह्मा जी? जब जाके उससे ऐसे बोला कौन से ब्रह्मा जी, तो फिर बोला कि जो ब्रह्मांड का सृजन करते हैं वो ब्रह्मा जी। वापस बोला, द्वारिकाधीश ने कहा कि जाओ पूछ के आओ कौन से ब्रह्मांड का सृजन किया आपने, तो कौन से वाले ब्रह्मा जी हो? तब है ना उन्होंने बोला कि आप उनको जाके बताओ कि जो ये वैरिंच्य ब्रह्मा जी है, यानी कि जो सनक संदन सनातन इन चार कुमार के पिताजी जो ब्रह्मा जी हैं वो मिलने आए हैं। तो फिर भगवान के पास जब गए, भगवान ने कहा कि चलो ठीक है, उसको बोला। ब्रह्मा जी अंदर गए तो देखा उनके पहले ही बहुत सारे ब्रह्मा जी पहले बैठे हुए थे। अभी ये हमारे ब्रह्मा जी के पास तो चार सिर होते हैं, कोई आठ सिर वाला, कोई दस सिर वाला, कोई पचास सिर वाला, कोई हजार सिर वाला, बहुत सारे सिरों वाले ब्रह्मा जी वहां पर बैठे थे। और हमारे जो ब्रह्मांड के ब्रह्मा जी हैं वो इन सब महान महान विशाल विशाल ब्रह्मों ब्रह्माओं के सेंटर में एकदम छोटे से डोल की तरह लग रहे थे। तो ये द्वारिका वासी सब जानते थे, देखते थे, सारे देव देवी देवता भगवान से मिलने के लिए आते हैं। तो कहते हैं, विरिंच्य वैरिंच्य सुरेंद्र वंदितम, आपके चरण कमलों की वंदना। तो ब्रह्मा शिव इंद्र जितने भी बड़े बड़े देवता हैं वो सब करते हैं। क्यों करते हैं? परायणम क्षेम हिच्छताम परम, जिनको जो व्यक्ति अपनी क्षेमम, क्षेमम का मतलब होता है कल्याण, कुशल, जो व्यक्ति अपना कल्याण चाहता है, जो व्यक्ति अपना हित चाहता है, जो व्यक्ति वास्तव में अपना भला चाहता है, उस व्यक्ति को जो के जन्म मरण के चक्कर से बचना चाहता है, सुख दुख से बचना चाहता है, तो उसके लिए आपके चरण कमल ही एकमात्र आश्रय है। तो यहाँ पे बता रहे हैं सुत गोस्वामी कि वास्तव में यदि क्षेम कहीं से प्राप्त हो सकता है, कल्याण कहीं से प्राप्त हो, हर कोई चाहता है ना। यहाँ पर लिखा हुआ है क्षेमम हिच्छतम, कि वास्तव में जो कल्याण चाहता है, कौन नहीं चाहता, हर कोई वस्तु चाहता है ना, हर कोई व्यक्ति चाहता है कि मेरा कल्याण हो, मेरा हित हो, मुझे दुख ना मिले, मुझे कोई प्रॉब्लम ना आए, मुझे टेंशन नहीं आए, हर कोई चाहता है अपना अच्छा, अपना कल्याण। और हर कोई व्यक्ति उस कल्याण को प्राप्त करने के लिए अपनी बुद्धि से एक रास्ता भी बनाता है, है ना। यदि ये हो जाएगा तो मेरा कल्याण होगा, यदि ये प्राप्त होगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, यदि ऐसा हो गया तो मुझे कभी दुख नहीं मिलेगा। परंतु यहाँ पर कहा जा रहा है कि वो सारे उपाय धरे के धरे रह जाएंगे। वास्तव में यदि किसी का क्षेम हो सकता है, किसी का कल्याण हो सकता है, यदि किसी का हित है, तो क्या है? परायणम क्षेम इह चित्तम परम, कि वास्तव में यदि किसी का सर्वोच्च कल्याण होगा तो उसी में होगा। नतः स्मते नाथ पदांग्री पंकजम, जो आपके चरण कमलों में सदैव नतमस्तक रहेगा। और दूसरा आगे इससे भी अच्छा बता रहे, नयत्र काल प्रभवित पर परम, प्रभु नयत्र काल, जो काल है, जो साक्षात सबकी मृत्यु, भगवान बताते हैं कालोस्मि लोक क्षय, जो काल है वो जो कुछ हमारे पास है, जो धन है, जो हमारा घर है, हमारी वस्तुएं हैं, जो कुछ हमने अर्जित किया है, जो कुछ हमने कमाया है, जो कुछ हमने संभाल के रखा है, वो सब हमसे छीन लेता है। इवन ये पालित पोषित करा हुआ बहुत ही लाड से जिस शरीर को हम पालते हैं, सारा दिन उसको सजाते संवारते रहते हैं, वो शरीर भी हमसे छीन लिया जाता है, है ना। कुछ भी नहीं रहता, केवल हम जीव, मनुष्यों के लिए नहीं, संपूर्ण जीवन जीव, जितने भी जीव हैं, यहाँ तक कि ब्रह्मा शिव आदि भी काल के अधीन हैं, है ना। ब्रह्मा एक दिन ऐसा आता है, ब्रह्मा को भी उनके पद से हटा दिया जाता है, है ना। उसी तरह से जितने भी देवी देवता हैं वो सब काल के अधीन हैं। परंतु यहाँ कहा गया न यत्र काल प्रभवेत पर प्रभु, परंतु आप तो दिव्य हैं, इसलिए न यत्र, यत्र मतलब यहाँ पर कहाँ पर, जहाँ पर जो आपके चरण कमलों में हम सब बैठे हुए हैं, सदैव आपके चरण कमलों में नतमस्तक होते हैं, तो यहाँ पर काल का भी प्रभाव नहीं चलता। यानी न यत्र, यहाँ पर काल, प्रबल काल का प्रभवेत अपना प्रभाव डाल सकता, नहीं डाल सकता, कभी नहीं डाल सकता। किनके ऊपर? जो कि भगवान के चरण कमलों में नतमस्तक होते हैं, पर प्रभु, क्योंकि आप देव हैं, आप दिव्य हैं, और इसलिए काल के भी प्रभु हैं आप, है ना। पर प्रभु यानी जितने भी प्रभु हैं वास्तव में दिव्य आप हैं, और काल भी आपकी इच्छा के अनुसार कार्य करता है, काल भी आपकी शरण में होकर कार्य करता है। ये केवल कहने की बात नहीं है, ये वास्तविकता है। कि हम जानते हैं श्रीमद् भागवतम में हम देखते हैं कि नंद सुनंद जब गुरु महाराज के लिए विमान लेकर आए, तो उस समय गुरु महाराज का जो शरीर था वो बिल्कुल दिव्य बन गया था। मतलब अब ऐसा नहीं था कि उनका शरीर भौतिक रह गया था, तो उनका शरीर एकदम दिव्य बन गया था। उस समय नंद और सुनंद ने कहा कि विमान आपके लिए भगवान ने भेजा है, आप इस पे बैठिए और गोलोक चलिए। तो जब ध्रुव महाराज उसके अंदर बैठ रहे थे तो काल आ गया। मतलब ध्रुव महाराज जो थे वो नीचे थे और विमान थोड़ा ऊपर था, तो वो उन तक पहुंच नहीं रहे थे। तो बीच में काल आ गया और कहा कि ध्रुव महाराज आप जाइए, भले ये आपका विमान आया है, लेकिन ये शरीर आपको यहीं पर छोड़ के जाना पड़ेगा, क्योंकि आप जल शरीर तो नहीं जा सकते। ध्रुव महाराज और नंद और उपनंद ने कहा इनका शरीर भौतिक नहीं है, इनका आध्यात्मिक शरीर है, और इसे आध्यात्मिक शरीर के साथ इनको अपना सिद्ध देह प्राप्त हो गया है, तो ये इसी देह के साथ हमारे साथ चलेंगे। तो फिर काल ने कहा कि काल जो यहाँ पर आए थे उन्होंने कहा चलो ठीक है, तो सर झुकाया और जहाँ पर अब देखो बीच में स्टेप था, मतलब वो नहीं चढ़ सक रहे थे ना विमान के ऊपर, तो काल ने एक स्टेप बनाया और ध्रुव महाराज काल के मस्तक पर पैर रख के उस विमान पर चढ़े। तो यहाँ पर इस बात को सिद्ध कर रहे हैं न यत्र काला प्रभवेत परह प्रभु, जो भगवान के चरणों में नतमस्तक होता है काल उसका कुछ नहीं बिगाड़ता, बल्कि काल भी उनके चरणों में अपने सर को रख देता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं श्रीमद् भागवतम में जब अजामिल का प्रसंग आता है, तो जब यमदूतों को विष्णुदूतों ने भगा दिया तो वो जाकर यमराज से बोलने लगे कि मुझे हमें ये बताइए कि वास्तव में कितने ईश्वर हैं, हमने आपने हमें आज्ञा दी थी कि अजामिल के प्राण लेकर आओ, हम जब अजामिल के प्राण लेने के लिए गए तो फिर पता नहीं वहां पर कौन से दिव्य पुरुष आ गए और उन्होंने हमें लाने नहीं दिया उसके प्राण, आपने हमें इस तरह से हमारी बहुत ज्यादा इंसल्ट होगी, जिधर जिधर हम जाएंगे और हमें लाने नहीं दिया जाएगा, आप हमें बताइए कि कितने ईश्वर हैं। तब यमराज केवल उन तीन दूतों को ही नहीं, यमराज ने उस दिन सभा बुलाई, बोला मैं आप लोगों को एक विशेष सूचना देना चाहता हूँ, आप सब आइए, जितने भी दूत हैं मेरे वो सब इकट्ठे होकर यहाँ पर आइए। और जब सारे आ गए तब यमराज ने कहा देखो मेरा भगवान के भक्तों पर कोई इख्तियार नहीं है, मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, भगवान के भक्तों पर मेरा कोई अधिकार नहीं है, मैं तो मनुष्यों में वो जो पापी लोग होते हैं आप लोगों को सिर्फ उन्हीं को लाने के लिए कहता हूँ, लेकिन जो एक बार भी भगवान का नाम लिए हैं, जो भगवान के पवित्र नाम का जप करते हैं, जो एकादशी उपवास करते हैं, जो तिलक लगाते हैं, जो कंठी पहनते हैं, कभी भी ऐसे भक्तों के सामने भी मत जाना, जो भगवान की भक्ति करते हैं, जो भगवान को प्रणाम करते हैं, जो भगवान की पवित्र लीलाओं को श्रवण करते हैं, जो गीता भागवतम का पाठ करते हैं, ऐसे भक्तों के सामने भी कभी मत जाना। वो तो अच्छा हुआ जो इन्होंने आपको छोड़ दिया, अगर आप और भी थोड़ा आग्रह करते तो फिर न्यूज़पेपर में तुम लोगों की मृत्यु का समाचार आ जाता। देखो मैं आप लोगों को वापस से एक बार सावधान कर रहा हूँ कि भक्तों के पास कभी भी मत जाना, जो भक्त होते भगवान के उनके पास कभी भी नहीं जाना, जो भगवान का पवित्र नाम का जप करते हैं और जो भगवान के को प्रसन्न करने के लिए कार्य करते। तो उनमें से किसी यमदूत ने पूछा कि देखो हम तो अपराधियों को सजा देने के लिए है ना, तो फिर अगर कोई भक्त होगा वो अपराध करेगा तो उन्हें तो लाना पड़ेगा ना। तब यमराज ने कहा नहीं, जो भक्त हैं वो भले अपराध भी यदि करते हैं तो भी उनका स्वामी मैं नहीं हूँ, उनका स्वामी भगवान है, भगवान विष्णु उनके स्वामी हैं, उनके लिए जो निर्णय लेना होगा वो स्वयं ही लेंगे। यमदूतों को मैं कोई भी अधिकार नहीं है कि भगवान के भक्तों के पास आए। जिस तरह एक राजा होता है, वो राजा संसार में जितने भी क्राइम्स होते हैं वो राजा के जो अधिकारी होते हैं उनको पनिशमेंट देते हैं, लेकिन राजा का स्वयं का बेटा यदि कोई अपना अपराध यदि कोई अपराध करता है तो उसको लाने के लिए पुलिस को नहीं बुलाया जाएगा, राजा स्वयं उसका निर्णय लेगा। उसी प्रकार से भगवान के भक्त यदि कोई अपराध करते भी हैं तो भी آپ ان کو کبھی بھی ان کے سامنے مت جانا. تو یہاں پر یہی بتا رہے ہیں نہ یتر کالا پربویت پر پربھو, کہ وہ بھگوان جن کے چرن کملوں کی شرن گرہن کر لیتے ہیں جو بھکت, کال بھی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا, کال بھی ان پر اپنا زور نہیں آزما سکتا. انواد ناگرکوں نے کہا ہے بھگوان آپ برہما چاروں کمار تتا سورگ کے راجا اندر جیسے سمست دیوتاؤں دوارا پوجت ہیں, آپ ان لوگوں کے پرم آشرے ہیں جو جیون کا سروچ لابھ اٹھانے کے لیے اچھک ہیں, آپ پرم دیویہ بھگوان ہیں اور پربل کال بھی آپ پر اپنا بل نہیں آزما سکتا. تاتپریہ شریلا پروپاد دوارا شریلا پروپاد کی جائے ہو. شریمد بھگوت گیتا برہم سمیتا تتھا انیا پرامانک ویدک ساہتیہ سے اس بات کی پوشٹی ہوتی ہے کہ شری کرشن پرمیشور ہیں, نہ تو کوئی ان کے سمان ہے اور نہ ہی ان سے بڑھ کر ہے, اور یہی سارے شاستروں کا مت ہے. نہ تت سما تو ادھکو کتونیا, ان کے سمان کوئی نہیں تو ان سے بڑھ کر بھلا کوئی کیسے ہو سکتا ہے. سارے جیو جو پرمیشور کے انش سوروپ ہیں اور ان پر آشرت ہیں, ان پر دیش کال کا پربھاؤ پڑتا ہے. سارے جیو برہم پردان ہیں اور پرمیشور پرم پردان ارتھات پربرہم ہیں. اس تتھیہ کو بھولتے ہی ہم موہگرست ہو جاتے ہیں اور تینوں تاپوں کے سے اسی طرح گرست ہو جاتے ہیں جس پرکار کوئی گھناندھکار میں ہو. ساودھان جیو کی ویمل چیتنا ایش چیتنا ہے جس کے سمکش منشیہ سدیو نت مستک ہے. شیلا پربھوپاد کی تو شیلا پربھوپاد جی سمجھا رہے ہیں کہ ایک واستوک جو ریئل گیان ہے وہ کیا ہے کہ سب جیو بھگوان جیو کال کے آدھین ہیں اور سب جیو برہما سے اتپن ہوئے ہیں, پرنتو بھگوان پرم پردان ہے یعنی وہ برہما کو بھی اتپن کرنے والے ہیں. تو برہما آدی سب کال کے آدھین ہیں, پرنتو جو بھگوان کے شری چرنوں کی پر نتمستک ہو جاتا ہے تو کال بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اور جو ویکتی یہ بات بھول جاتا ہے, جب ہم بھگوان کی سروچتا کو بھول جاتے ہیں, بھگوان کی سروشکتی متا کو بھول جاتے ہیں, اسی کے کارن ہم موہ گرست ہو جاتے ہیں اور تینوں تاپوں سے اسی طرح گرست ہو جاتے ہیں جس پرکار کوئی گھناندھکار میں ہو. یاد نہیں رہتا پھر آدھی بھوتک آدھیاتمک آدھی دیوک کاشٹ بار بار آتے, اس کا کارن کیا ہے؟ صرف اور صرف بھگوان کو بھول جانا. تو ہمارا سوبھاگیہ ہے کہ ہم شریمد بھاگوتم دوارا بھگوان کی ان مدھور لیلاؤں کو پڑھ رہے ہیں جس کے پرتی ہردے کے اندر بھگوان کا سویا ہوا پریم دھیرے 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 جاگ رہا ہے, اور ایک سمے ایسا آئے گا ہردے پورا بھگوان کے پریم سے بھر جائے گا اور وہی واستوک سدھی ہے. کرپیا ساتھ رہیے گا اور میرے لیے پرارتھنا اوشیہ کیجیے گا کہ میں اپنی سیوا اور اپنی سادھنا کو بہت اچھے طریقے سے کر سکوں. ہری کرشن.